संसार में रहते हुए प्रभु की भक्ति करना एक बड़ा ही कठिन कार्य दिखाई पड़ता है। कोशिश करके प्रभु की याद करने बैठ भी जाए तब पता लगता है कि मन तो बैठने ही नहीं था, प्रभु की याद करने ही नहीं था। पहले तो समय निकालना मुश्किल है, समय निकाल भी ले तो मन लगाना मुश्किल। इसीलिए सत्पुरुष तरह तरह से ईश्वर के विज्ञान को और प्रकृति के विधान को हमारे आगे पेश करते हैं ताकि कोशिश करके सत्पुरुषों की बात पर विश्वास करके हम ईश्वर भक्ति करने में सफल हो गए। तो सिमरन में सफलता कैसे मिले या सहज रूप में ईश्वर की भक्ति कैसे हो, इसके लिए दो सूत्र वाणी में उपलब्ध है जिनको यदि समझ लिया जाए तो बुद्धि का निश्चय मनुष्य का बदल सकता है। बुद्धि का निश्चय जब बदलता है तभी पता लगता है कि जैसे हालात हमारे संसार की है, हमारे गृहस्थ जीवन की है, इन हालात में रहते हुए भी मैं ईश्वर की उपासना करने में सफल हो सकता हूं। एक सूत्र आता है, जैसी भावी क्यों चलाए अटल हुक्म जानो प्रभु राय। जैसी भावी क्यों चलाए अटल हुक्म जानो प्रभु राय। हमारा संसार में जब जन्म होता है या हमारी देह का जब संसार में जन्म होता है तो हम सब जानते हैं कि जन्म पत्री साथ आती है, क्या होना है क्या नहीं होना है, कैसा जीवन चलना है, इसका पता यदि कोई वास्तव में सही ज्योतिष है पता लगा सकता है, उसकी फोरकास्ट कर सकता है, उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन यदि वो ये ठेका लेता है कि किसी विशेष प्रकार की उपासना से उसको मैं बदल सकता हूं, तो केवल वो आपको धोखा दे रहा है, वो प्रभु के विधान को बदलने की कोशिश कर रहा है जो संभव ही नहीं। इसलिए वाणी यह सीधी ईश्वर की आवाज है, इसके बीच में कोई मनुष्य की बुद्धि काम नहीं कर रही। इसलिए ईश्वर का दृढ़ है कि जैसी भावी क्यों चलाए अटल हुक्म जानो प्रभु राय। जो घटनाक्रम आपके जीवन में घटना है, जो सुख दुख आपके जीवन में आने जाने हैं, वो सब कुछ प्रभु के विधान के अनुसार या यूं कह लें कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार या भावी के अनुसार वो आएंगे ही, उसको कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए जब मैं प्रभु के इस विधान पर वास्तव में अटल विश्वास करता हूं, तब इस समय स्मरण करने बैठता हूं, मेरा मन जो संसार की तरफ भागता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा कोई काम बिगड़ तो नहीं जाएगा, तरह तरह के शंकाएं हमारे मन में उठा करती हैं, उनके प्रति जो अनिश्चय का भाव है वो मन से हट जाता है, तो आपका जो मन है वो प्रभु नाम में लगने लगता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, इतना साधारण नहीं है, इसके लिए बड़े तप की जरूरत होती है, तब जाकर ये विश्वास हमारे अंदर बैठा करता है। एक बार की बात है, महाराज जी जगाधरी में मौजूद थे, उनके एक शिष्य गंडूराम थे वहां पर, जब उनके सामने बैठे थे महाराज जी के सामने, महाराज जी ने पूछा प्रेमी क्या काम करते हो, बोला तो महाराज जी हम बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो बोले कैसे बेचते हो उनको, तो बोले मार्केट का जो ट्रेंड है, जो प्रचलन है, उसके हिसाब से पर्ची जो है लिख के दे देते हैं। बोले प्रेमी खाता में एंट्री नहीं करते उसकी, बोले नहीं प्रेमी नहीं महाराज जी। इसका मतलब तुम सरकार की टैक्स की चोरी करते हो। बोले महाराज जी ऐसा ही प्रचलन है मार्केट में, हमको भी करना पड़ता है। तो माहिर का प्रेमी चाहे दुनिया कुछ भी करे लेकिन तुमने ठीक चलना है, तुमने पूरा हिसाब रखना है और सरकार का टैक्स भी देना है। खैर भाजी की बात वो टाल तो सकते नहीं थे, उनका एक पार्टनर भी था। जब घर गए तो पार्टनर ने कहा कि इस तरह तो बर्बाद हो जाओगे, कैसे चलेगा, कोई भी टैक्स नहीं देता, कोई भी जो है वो खाता नहीं रखता उसका। खैर गंडू राम जी ने कहा कि गुरु ने कहा है इसलिए बात को हम मानेंगे ही और इसी के अनुसार कारोबार करेंगे। खैर उन्होंने गुरु की बात मानकर कारोबार करना शुरू कर दिया। बर्तन बिकना बंद हो गए उनके, क्योंकि टैक्स आप जब दोगे सरकार को तो ग्राहक से ही लोगे, तो बर्तन महंगे आप बेचोगे फिर वो कोई खरीदने को तैयार नहीं, उनका गोडाउन भर गया। करते करते एक साल जब निकल गया तब पार्टनर बोला उनका कि ऐसे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, फकीर क्या जाने बिजनेस कैसे होता है। खैर उनकी बात सिर्फ वही साथी जी समझ में आ गई, उन्होंने पुराने तरीके से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। वक्त बीता गया, एक दिन सरकार का ऑर्डर आया कि जिन्होंने नंबर एक में जितना प्रोडक्शन किया है उतने मेटल का कोटा उनको सरकार की तरफ से मिलेगा, वो काफी सस्ता मेटल था। खैर जब कोटा मिला उनको तो सोचने लगे काश हमने यदि गुरु की बात मानी होती तब हम धनी बन गए होते। एक साल तक मानी थी गुरु की बात तो जितना उन्होंने मेटल के बर्तन बनाए थे उतने मेटल का कोटा उनको मिल गया, बाकी महंगा मेटल उनको खरीदना पड़ता था। लेकिन समस्या दूसरी है, इतना बड़ा दिल हम लाए कहां से। इसीलिए सतपुरुष एक दूसरी बात भी करते हैं, वो कहते हैं संयम रखना सीखो, मर्यादा में जीवन जीना सीखो। इसका मतलब क्या हुआ, गुजरान वाला प्रोग्राम बनाकर चलो ताकि पैसे की जरूरत ही आपको कम रह जाए। यदि देखा देखी आपने महल खड़े करने शुरू कर दिए, फैशन करने शुरू कर दिए, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी तो फिर तो बेमानी करनी आपका मजबूरी बन जाएगी। इसके खर्चे बड़े थोड़े से, वो ईमानदारी से कमा सकता है, गुजरान वाला प्रोग्राम चला सकता है, लेकिन ये काम करेगा कौन, ये वही कर पाएगा जिसके जीवन में ईश्वर का महत्व है और जो सतपुरुषों की बातों को महत्व देता है, जैसे कि वाणी का विचार है, वाणी में जो मार्गदर्शन है, जैसे कि रामायण का मार्गदर्शन अभी हम सुन रहे थे, तो इस मार्गदर्शन को वो समझने की कोशिश करता है, तब उसकी बुद्धि में विवेक जागृत होता है, सही क्या है और गलत क्या। मैं कौन हूं, संसार क्या है, करतार क्या है, ये सारा विज्ञान उसको पता लगता है। अब देखिए मेरे बारे में ही वाणी क्या कह रही है, दुखी जीव की सुन पुकार सतगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार सुनकर प्रभु गुरु रूप में संसार में आते हैं और उस जीव का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन मैं अपने आप को क्या समझता हूं, मैं अपने आप को शरीर समझता हूं, तो वाणी तो आपको जीव कह रही है जो जिंदा वस्तु है, जो इस देह के अंदर अनुभव करने वाली सत्ता है वो है जीव। तो मैं अनुभव करता हूं, मुझे पता है, इसलिए जैसा कि स्वप्न का उदाहरण आप सुन रहे थे वहां भी तो यही होता है, ये मेरी देह जिसको मैं अपना स्वरूप समझ रहा हूं वो तो सो जाती है, लेकिन मैं स्वप्न फिर भी अनुभव करता हूं। उसके बाद भी ये सोचने को तैयार नहीं हूं कि शरीर तो सो रहा था लेकिन अनुभव मैंने ही किया, तो मैं हूं कौन। मेरे मन में ये सारे जन्म में एक बार भी प्रश्न उठता ही नहीं, तो ऐसी गहरी अज्ञानता में रहकर मैं जीवन व्यतीत कर देता हूँ। मैं सत्पुरुषों को गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं समझता, उनकी वाणी को समझने की जरूरत ही नहीं समझता, यही समझता रहता हूँ संसार ऐसे ही चलता है, यदि ऐसे ना चले तो हमारा गुजारा कैसे। ये भूल जाते हैं कि जन्म हमको जो मिला है ये प्रभु ने दिया है, मेरे पास कर्मों के अनुसार जो भाग्य मेरा इस जन्म के साथ उदय हुआ है वो प्रभु ने मेंटेन किया है, और ये शरीर जब तक जिएगा प्रभु ही इसको जिंदा रखेंगे, क्योंकि इस जिंदगी के अंदर जान वो स्वयं है। इस विधान का, इस विज्ञान का मुझको पता ही नहीं, दूर दूर तक पता नहीं, इसीलिए मैं स्वप्न के विज्ञान पर, स्वप्न की स्थिति पर विचार करने को भी तैयार नहीं हूं। बड़ी साधारण सी बात है, आपके मन के अंदर कोई इच्छा जागृत हो जाए और ऐसी इच्छा जागृत हो जाए कि यदि वो पूरी ना हो तो आप सुसाइड करने को भी तैयार हो जाओ, तो देखते हैं आप, इच्छा मन के अंदर जागृत हो रही है लेकिन सुसाइड किसका कर रहे हैं, अपनी देह का कर रहे हैं। कहते हैं इच्छा पूरी नहीं हुई तो जीने से अच्छा मर जाना अच्छा, लेकिन मुझको ये पता ही नहीं है, देह मर जाती है मैं फिर भी बच जाता, और जो ये पाप कर्म किया प्रभु ने देह दी थी ईश्वर प्राप्ति के लिए, वो तो मैंने इसका उपयोग ही नहीं किया, वासना पूर्ति के लिए उपयोग किया, तो ये जो पाप मैंने किया इसकी सजा फिर अगली देह जब मिलती है उसमें भोगनी पड़ती है। इसको हम भाग्य कह देते हैं, जिसको प्राप्त कहते हैं, जिसको यहां वाणी भावी कह रही है। तो जैसी भावी क्यों चलाए, अटल हुक्म जानो प्रभु राय, ये प्रभु का अटल हुक्म है, इसको कोई बदल नहीं सकता। महाराज जी के एक शिष्य नंदलाल जी हुए हैं जो हल्द्वानी में रहते थे, जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये बंटवारा हुआ तो रावलपिंडी में उनका व्यवसाय था, तो उस समय कोई कारोबार था नहीं भारत के अंदर। महाराज जी उस समय शिमला में ठहरे हुए थे जाकू की पहाड़ी पर, तो खाली थे उस समय नंदलाल जी, वो महाराज जी के चरणों में पहुंच गए। जब बातचीत हो रही थी तो महाराज जी ने पूछा, प्रेमी कोई कारोबार ढूंढा? नहीं महाराज जी। महाराज जी बोले, तुम्हारा साथी कहां गया, जो पार्टनर रहा होगा रावलपिंडी में? तो बोले, वो तो हल्द्वानी चला गया। तो महाराज जी बोले कि वहां क्या कारोबार होता है? बोले, वहां पहाड़ी घी का व्यवसाय चलता है आजकल। बोले, तू भी वहीं चला जा, कहीं फड़ पर जो है एक मलसिया लेकर घी, पहले ये मिट्टी के जो घड़े होते हैं इसके अंदर बिका करते थे, गांव वाले आते थे और जो आरती कहिए या जो भी व्यवसायी होते थे वो उनसे पास रख लेते थे, जब बिक जाता था उनको पैसे मिल जाते थे। उसी प्रकार महाराज जी का, तू भी वहीं चला जा। साथ में एक बात और कह रहे हैं महाराज जी, प्रेमी तेरे भाग्य का तो कहीं भी बैठ जाएगा वहां पहुंच जाए, क्योंकि सारे संसार को चलाने वाला ईश्वर है, मनुष्य नहीं है। वहम में जीते हैं कि मेरे कारण जिंदगी चलती है, अरे जिस धरती पर बैठे हो ये यदि घूमना बंद कर दे तो आई जिंदगी कहां से चलेगी? जिस वायु से श्वास ले रहे हो इसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज यदि ईश्वर गड़बड़ कर दे तो कहां से जी हो गया? सूर्य के कारण आपकी जिंदगी चल रही है, सारी फसलें हो रही हैं, पानी के कारण आपकी जिंदगी चल रही है, मनुष्य का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। तो जिंदगी का मालिक तो अभी भी आपका ईश्वर है, चाहे साइंस कितनी भी एडवांस कर जाए लेकिन मनुष्य का जीवन ईश्वर के आश्रय ही चलता है, ईश्वर के द्वारा ही चलता है, उस पर वो विचार नहीं करता, इसलिए गलत फहमी पारता है, शायद बड़े बड़े वैज्ञानिक है इसलिए मेरी जिंदगी चल रही है। तो महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी तो कहीं भी चला जा, भाग्य तेरा वहीं पहुंच जाएगा। इसीलिए ये वाणी की बात पर भरोसा करें, ये ईश्वर की वाणी है, सीधी उसकी आवाज है कि जैसी भावी त्यों चलाए, अटल हुक्म जानो प्रभु राम। ये अटल हुक्म है, इसको कोई टाल नहीं सकता, मनुष्य को पावर दी ही नहीं गई है कि ईश्वर के विधान को वो बदल सके। इसलिए निश्चिंत तो होकर आप ईश्वर की याद कर सकते हो, ईश्वर की उपासना कर सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक और बात वाणी दूसरी दूसरा सूत्र भी बता रही है, नाम नीर से धोइए मन के सकल विकार। नाम नीर से धोइए मन के सकल विकार, मंगत निर्मल होए के दर्श पाइए करता। नाम रूपी अर्थात मंत्र रूपी जो पानी है उससे मन की मैल धुल जाती है। मां जी कहते थे, प्रेमी जन्म जन्मांतर के संस्कार सिद्ध मंत्र के जाप से, गुरु मंत्र के जाप से नष्ट हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो मन जब साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, कहते हैं मंगत निर्मल होए के दर्श पाइए करता। इसी देह के अंदर वो परमेश्वर मौजूद है, बाहर नहीं है। तो मुझको दर्शन जो वास्तव में ईश्वर है वो अंदर ही होते हैं। रोम रोम में रमत स्वामी, नाम नाम भज अंतर्यामी। वो स्वामी रोम रोम में रम रहा है, रोम रोम में प्रेजेंट है वो, उसके दर्शन अंदर ही होते हैं। इसलिए बाहर की उपासना आपके अंदर ईश्वर विश्वास जागृत करती है कि भाई ईश्वर की आवश्यकता है, ईश्वर वास्तव में है, तेरा जीवन यह ईश्वर के बिना चल नहीं सकता। लेकिन वास्तव में ईश्वर प्राप्ति की बात जब आती है, असली ईश्वर दर्शन की बात आती है, तब सारे संत एक ही बात कहते हैं कि प्रभु की उपासना मौन होकर आंख बंद करके मन के अंदर ही होती है, तन के अंदर ही होती है। तो बाहर की उपासना ये जीवन का बचपन है, बुद्धि विकसित नहीं होती, इसलिए वहां से स्टार्ट की जाती है। बच्चों को कैसे सिखाओगे कि ईश्वर अंदर है, वो तो कभी नहीं सीख सकता, इसलिए ये जीवन का प्रारंभ है। लेकिन जब पूजा असली की आती है तब हमको गुरु धारण करना पड़ता है, उन ऋषि पर विश्वास लाना पड़ता है, वो सिखाता है कि ईश्वर क्या है वास्तव में, कहां उसका निवास है, कहां वो प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। इसलिए दूसरा रहस्य ये वाणी बयान कर रही है कि नाम नीर से धोइए मन के सकल विकार, मंगत निर्मल होए के दर्श पाइए करता। जैसे जैसे आप गुरु मंत्र का, सिद्ध मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि महामंत्र आप जानते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है मन के ऊपर, इसके अंदर वो शक्ति है जो आपके मन के संस्कारों को धीरे धीरे धो डालती है, साफ कर देती है, उनको प्योरीफाई कर देती है। इसीलिए सब कुछ एक दूसरी बात भी कह रहे हैं कि जो सिद्ध मंत्र है वो कहते हैं कि वो मंत्र और जो गुरु है वास्तव में पूर्ण गुरु है, मंत्र गुरु ईश्वर वो कहते हैं एक ही चीज, एक ही चीज के ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन। जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसको हम मंत्र कहते हैं, ये चारों चीजें एक ही हैं। इसी आज की स्थिति में मैं अंतर्यामी ईश्वर का संग करने में सफल नहीं हो सकता, जानता ही नहीं कुछ। इसीलिए ईश्वर मंत्र रूप में अवतार लेकर उस पर कृपा करते हैं कि मैं मौन होकर मन से उस मंत्र का स्मरण कर सकता हूं। तो मंत्र की शक्ति क्या है, ये ईश्वर शक्ति है। ये क्या करती है कि मन के अंदर मैंने पूर्व जन्मों के संस्कार लेके आया हूं या इस जन्म में भी जो संस्कार बनाए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे सदमन का जाप होता है ये मन आपका साफ होता रहता है, इसके अंदर जो गंदगी है भोगों की वासना की ये भूलने लगती है। तो इसका प्रभाव कहां पड़ता है, मन जैसे जैसे आपका निर्मल होता है, इसकी चंचलता कम होती है, वैसे ही वैसे आपकी श्वास की गति भी, अंदर आना और बाहर जाना ये विषम स्थिति है, इसको बारह सोलह की गति बोलते हैं शास्त्र में, तो ये गति भी सम होने लगती है, अर्थात श्वास का अंदर आना श्वास का बाहर जाना ये इक्वलाइज हो जाता है, सम हो जाता है। तो इसका प्रभाव कहाँ होता है, फिर इसका प्रभाव मेरी देह के अंदर उस स्थान पर होता है जिसको हम नाभि कहते हैं, जिसको हम नाभि चक्र कहते हैं, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। तो तो वो जैसे वाणी कह रही है, नाभ कमल है अचरज थाना, जामे वसया श्री भगवान, उसमें श्री भगवान का निवास है। तो ये नाभि चक्र मेरा जो उसमें नाद रूप में कुंडली रूप में जो प्रभु का निवास है, उसका बोध मुझको अंदर होने लगता है। नाम सिमरन का सिद्ध मंत्र के जाप का प्रभाव कहाँ होता है? इस नाभि कमल पर होता है, मेरी श्वास की गति पर होता है। इसीलिए जैसे जैसे मानसिक बेचैनी आपकी कम होगी, आप ईश्वर भावी पर आपका विश्वास आएगा, और प्रेम से उसके नाम का जब जाप करोगे, उसके मंत्र का जब जाप करोगे, तब आपके अंदर वो स्थिति आ जाएगी कि नाभि के अंदर ईश्वर के आनंद का पहला अनुभव आपको उपासना के वक्त ही होगा। तब पता लगता है कि प्रभु मेरे अंदर मौजूद हैं, मैं कहाँ ढूंढता रहा, कहाँ भटकता रहा सारे जन्म। तो पूर्ण गुरु की बड़ी कृपा होती है, या प्रभु की बड़ी कृपा होती है, जब हमारा विश्वास पूर्ण गुरु पर आता है और उसके अनुसार जब हम अपनी उपासना शुरू करते हैं, और उपासना में सफलता के लिए दूसरा सूत्र पर भी हम विश्वास करते हैं कि जैसी भावी क्यों चलाए अटल हुक्म जानो प्रभु, पूरा विश्वास होता है मेरा संसार में ना कुछ बनना है ना बिगड़ना है। जितनी आयु मिली है इस देह को उसकी रक्षा प्रभु करते हैं, आप तो जानते ही नहीं अपने शरीर को क्या बड़ा कर सकते हो, क्या आप स्वयं अपने शरीर को बूढ़ा कर सकते हो। सारे शरीर की परिस्थितियां प्रभु के हाथ में है, वो अंतर्यामी प्रभु इसकी रक्षा भी करते हैं, उसको नष्ट भी करते हैं। इसीलिए प्रभु पे निर्भर होना सीखो, उस पर विश्वास करना सीखो। जो उस पर विश्वास आएगा वो कब आएगा? जब प्रभु की वाणी जो प्रकट हुई है उस वाणी पर विश्वास आएगा। उसको मैं विचार के साथ पढ़ूंगा, उसको सीखने की कोशिश करूंगा कि मैंने यदि ईश्वर की भक्ति करनी है तो होगी कैसे। तो कितने सरल सूत्र हैं और कितने सटीक हैं, तो विचार करते थे कि नाम नीर से धोइए मन के सकल विकार, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, अर्थात मन संकल्प रहित हो जाता है। तो जिस समय मन संकल्प रहित होता है उस समय इस जीव की समाधि लग जाती है, इस प्रिय शरीर को ही भूल जाता है, इस मन के अंदर संकल्प का उठना ही बंद हो जाता है। जो मन रुकता ही नहीं था मेरा, वो संकल्प रहित हो जाता है, उसमें केवल ईश्वर का दर्शन होता है, केवल ईश्वर का आनंद होता है। इसीलिए वाणी कह रही है कि जिस समय समाधि टूटती है तो योगी रोता है, योगी रोए समाधि को छोड़े प्रभु का है कम विसार, पंडित रोए वेद का वक्ता पावत नाक सार। कितना ही ज्ञान सीख लो उसे ठंडक नहीं मिली, ठंडक अल्टीमेटली अंदर नाम सिमरन से प्रभु सिमरन से मिलनी है, और प्रभु का दर्शन प्रभु का आनंद अंदर प्रकट होना है। और इसमें यदि स्थिरता चाहिए सफलता चाहिए तो प्रभु भावी पर या प्रारंभ चक्र पर जो प्रभु के हाथ में है उस पर विश्वास करना चाहिए, ताकि जब करते समय पूजा करते समय मेरा ध्यान संसार पर बार बार ना जाए, पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए निश्चिंत होकर ईश्वर की उपासना करें, इस तरह से सहज रूप में भक्ति करके अपना मानव जीवन सफल कर सकते हैं। ओम।